ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಜ್ ಹಮಾರೇ ಬೀಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ದೀದಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೈ. ಹಮ್ ಸಭಿ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಕಿ ಅಲೌಕಿಕ ತಾಲಿ ಸೇ ಆಪ್ಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ದೀದಿ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವಿ ಔರ್ ಬುದ್ಧಿ ಸೇ ಮೇಧಾವಿ ಹೈ. ಬಚಪನ್ ಸೇ ಹಿ ಆಪ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ರಹೇ ಹೈ ಔರ್ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಧಾರಿ. ಏಕ್ ಹಿ ಧುನ್ ಏಕ್ ಹಿ ಲಗನ್, ಬಸ್ ಮುಜೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನ್ನಾ ಹೈ, ಮುಜೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನ್ನಾ ಹೈ. ಅಪ್ನಿ ಸಚ್ಚಿ ಲಗನ್ ಔರ್ ಅಥಕ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೆ ಬಲ್ ಸೇ ಅನೇಕಾ ಅನೇಕ ವಿಘ್ನೋ ಕಾ ಸಾಮನಾ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಆಪ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೋ ಹಾಸಿಲ್ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಅಪ್ನೆ ನಾಮ ಕೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿ ಪದವಿ ಸೇ ಸುಶೋಭಿತ ಕಿಯಾ. ಕಹತೆ ಹೈ ನಾ ನರ್ ಚಾಹತ್ ಕಛು ಔರ್ ಔರ್ ಪ್ರಭು ಚಾಹತ್ ಕಛು ಔರ್. ಆಪ್ ಮಾನವ ಸೇವಾ ಮೇ ರುಚಿ ರಕ್ತೆ ಥೇ, ಲೇಕಿನ್ ಬಾಬಾ ಚಾಹತಾ ಥಾ ಕಿ ಆಪ್ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಬನ್ಕರ್ ವಿಶ್ವ ಕಿ ಆತ್ಮಾವೋ ಕಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರೇ. ಸೊ ಬಾಬಾ ಕಾ ಪರಿಚಯ ಮಿಲಾ ಔರ್ ಬಾಬಾ ನೇ ಆಪ್ಕೋ ಅಪ್ನಿ ಸೇವಾ ಮೇ ಲಗಾ ಲಿಯಾ. ಜಿಸ್ಮಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಬದಲೇ ರೂಹಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನಾ ದಿಯಾ. ಸದಾ ಅಂತರ್ಮುಕ್ತಾ ಕಿ ಗುಫಾ ಮೇ ಮೌನ ವ್ರತ ಧಾರಣ ಕರ್ ರಹನೆ ವಾಲಿ ಭೋಲಿ ಭಾಲಿ ಆತ್ಮಾ ಕೋ ಸಚ್ಚಾ ಸಚ್ಚಾ ಯೋಗಿ ಬನಾ ದಿಯಾ. ಕ್ಯೂಕಿ ಬಚಪನ್ ಸೇ ಮೈ ಸಾಥ್ ರಹಿ ಹೂ ನಾ ದೀದಿ ಕೆ, ಇಸ್ಲಿಯೇ ಉಸ್ಕೆ ಹರ್ ಗುಣ ಔರ್ ವಿಶೇಷತಾ ಕೋ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಿ ತರಹ ಸೇ ಜಾನ್ತಿ ಹೂ.
ಅಚ್ಚಾ ಸಬ್ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ ಕ್ಯಾ?
ಕಲ್ ಹೀ ಪತಾ ಚಲಾ ಹೈ ನಾ, ಕಲ್ ರಾತ್ ಕೋ ಕುಚ್ ಐಸಾ ಅಚಾನಕ್ ಕುಚ್ ಐಸಾ ಹೋ ಗ್ಯಾ ಕಿ ಪರಿಚಯ ಮಿಲ್ ಗ್ಯಾ. ತೋ ಈಶ್ವರೀಯ ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತ ಪಿಲಾಕರ್ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮಾವೋ ಕಿ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಯೋತಿ ಜಗಾನೆ ವಾಲಿ ಪ್ರೇಮ ಕಿ ಅವಿರಲ್ ಗಂಗಾ ಬಾಬಾ ನೇ ಇಸ್ ಆತ್ಮಾ ಕೋ ಬನಾ ದಿಯಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಮೇ ಡೂಬಾ ಆಪ್ಕಾ ಮನ್ ಶಿವ ಕ್ಷಮಾ ಪರ್ ಫಿದಾ ಹೋ ಗಯಾ ಔರ್ ಆಪ್ ಸಮರ್ಪಿತ ಹೋ ಗಯೆ ಇಸ್ ಈಶ್ವರೀಯ ಯಜ್ಞ ಮೇ 1989 ಮೇ. ಹಮ್ ದೋನೋ ಏಕ್ ಹಿ ದಿನ ಇಸ್ ಯಜ್ಞ ಮೇ ಸಮರ್ಪಿತ ಹುವೆ ಹೈ. ಔರ್ 1989 ಸೇ ಇಸ್ ಯಜ್ಞ ಮೇ ಅಪ್ನಿ ಸಮರ್ಪಿತ ರೂಪ ಸೇವಾಯೆ ದೇ ರಹೆ ಹೈ. ಆಪ್ ಜಬ್ ಯಹಾಂ ಆಯೆ ತೋ ದಾದಿ ಪ್ರಕಾಶ್ಮಣಿ ಜೀ ನೇ, ಯಹಾಂ ಪೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೈ ಮೌಂಟ್ ಮೇ, ವಹಾಂ ಪರ್ ಆಪ್ಕೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಅಪ್ನಿ 10 ಸಾಲ ಸೇವಾಯೆ ದೇನೆ ಕಾ ಅವಸರ ಮಿಲಾ ಔರ್ ಆಪ್ನೆ ವಹಾಂ ಪೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಅಪ್ನಿ ಸೇವಾಯೆ ದೀ. ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶಾಸಕಾ ದಾದಿ ಪ್ರಕಾಶ್ಮಣಿ ಜೀ ನೇ ಆಪ್ಕೋ ಅಪ್ನಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನಾಯಾ ಔರ್ ಅಪ್ನೆ ಸಾಥ್ ಪಾಂಡವ ಭವನ್ ಮೇ ಹಿ ರಖಾ. ಔರ್ ಆಪ್ ಜಬ್ ತಕ್ ದಾದಿ ಜೀ ರಹೇ 2007 ತಕ್ ದಾದಿ ಜೀ ಕೆ ಸಾಥ್ ಉನ್ಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸೇವಾ ಕರ್ತೆ ರಹೇ ಔರ್ ಯಜ್ಞ ಕಾ ಕಾರೋಬಾರ್ ಮುನಿ ದೀದಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಂಭಾಲ್ತೆ ರಹೇ. ಔರ್ ಅಭಿ ವರ್ತಮಾನ್ ಮೇ ಆಪ್ ಮುಖ್ಯಾಲಯ ಮೇ ಹಿ ರಹತೆ ಹೈ ಶಾಂತಿವನ್ ಮೇ, ಔರ್ ವಹಾಂ ಪರ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಂಗ್ ಜೊ ಅಪ್ನಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಹೈ. ಆಪ್ನೆ ಈಶ್ವರೀಯ ಸಂದೇಶ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಮೇ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಾವೋ ಕೋ ದೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅನೇಕ ದೇಶೋ ಕಿ ಯಾತ್ರಾ ಕಿ ಹೈ. ಔರ್ ಆಜ್ ಹಮಾರೆ ಬೀಚ್ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ವಿಷಯ ಕೆ ಸಾಥ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೈ. ಆಜ್ ಆಪ್ ಹಮೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೈಸೆ ಬನೆ ಇಸ್ ವಿಷಯ ಪರ್ ಅಪ್ನೆ ಅನುಭವಿ ವಿಚಾರೋ ಸೇ ಲಾಭಾನ್ವಿತ ಕರೆಂಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ದೀದಿ
ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಜ್ ಆಪ್ ಸಬ್ಕಿ ಪಾಂಡವ ಭವನ್ ಕಿ ಭರ್ತಿ ಕಾ ತೀಸರಾ ದಿನ ಹೈ. ತೋ ಅಭಿ ತಕ್ ತೋ ಸಭಿ ಕಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋ ಗಯಿ ಹೋಗಿ. ಆಪ್ಕೆ ಚೆಹರೆ ಹಿ ಬತಾ ರಹೇ ಹೈ, ಸಬ್ಕೆ ಚೆಹರೆ ಬಹುತ್ ಖಿಲೆ ಹುವೆ ಔರ್ ತಪಸ್ವಿ ನಜರ್ ಆ ರಹೇ ಹೈ. ಯಹಾಂ ಜೋ ಹಮ್ ತಪಸ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹಮೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾಬಾ ಕಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನುಭವ ಹೋತಿ ಹೈ. क्योंकि बाबा की तपस्या भूमि और कर्म भूमि है। कौन कौन भाई बहने हैं जो पहली बार पांडव भवन में रह करके तपस्या कर रहे हैं? अच्छा, काफी हैं। और कौन कौन है जो पहले भी आए हैं यहाँ, मतलब भट्टी करने पहले भी आए? अच्छा, 50-50 है। तो बाबा हमें कहते हैं, हम सब राजयोगी हैं, बाबा ने हमें राजयोगी बनाया है, प्रजा योगी नहीं है। तो राजयोगी अर्थात जो कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाले हैं, जिनका स्वयं पर अधिकार है। बाबा कहता है, मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब अभी स्वराज्य अधिकारी हैं, स्व पर राज्य करते हैं, और भविष्य में फिर विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले बच्चे हैं, और फिर हैं द्वापर और कलयुग का राज्य। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है वो वर्तमान का स्वराज्य है, और उसके बाद फिर विश्व का राज्य है, और फिर द्वापर कलयुग के स्टेट का राज्य। बाबा बोलता है कि वो तो क्योंकि बहुत अनेकता हो जाती है द्वापर कलयुग में जाते जाते, तो काफी बढ़ जाता है, एक राज्य एक मत एक कुल एक भाषा तो रहती नहीं है, तो फिर वो छोटे छोटे राज्य हो जाते हैं, लेकिन वो भी राज्य अधिकारी जो हैं वो यही आत्माएं कोई ना कोई वहां जाकर बनती हैं। तो इसीलिए बाबा को नशा है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है। तो कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनना माना हर कर्मेंद्रिय बाबा के श्रीमत अनुसार चले, मनमत या परमत पर नहीं चले। सामान्यतः लोग कर्मेंद्रियों के गुलाम होते हैं, यानी कर्मेंद्रियां उनको जैसे चलाती हैं वैसे जीवन चलता है, जो मन में आया देख लिया, जो मन में आया सुन लिया, जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया कर लिया, ऐसे ही कहेंगे। दुनिया कैसे चलती है? दुनिया ऐसे ही चलती है, लेकिन हम बाबा के बच्चे कैसे चलते हैं? हमारी कर्मेंद्रियां बाबा की श्रीमत प्रमाण देखें, श्रीमत प्रमाण सुने, श्रीमत प्रमाण हम बोले, तब हम स्वराज्य अधिकारी हैं। और योग से बाबा कहता है कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हो जाती हैं, और कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हैं माना हम ना स्वयं कभी दुखी होंगे और ना कभी किसी को दुख देंगे। तो सबसे पहले तो हमारी आंखें जो सबसे ज्यादा धोखा देती हैं, बाबा कहता है मुरलियों में, कल की मुरली भी बहुत बाबा ने बोला, सिविल आई और क्रिमिनल आई। तो सबसे ज्यादा जो परीक्षा होती है इस कलयुग की दुनिया में वो दृष्टि वृत्ति की ही होती है। तो जब तक हम पूरी तरह से आत्मविमानी नहीं बने, क्योंकि आत्मविमानी बनने की भी मेहनत है, इतना सहज हम देही अभिमानी नहीं बन जाते हैं, भले बाबा रोज हमें मुरली में कहते हैं। तो बाबा हमें क्यों सिखाते हैं कि देह पर हमारी नजर जानी ही नहीं चाहिए? नजर कहाँ जानी चाहिए? आंखें किसको देखें? मस्तक मणि को देखें, आत्मा को देखें। और जब हम आत्मा को देखते हैं तो ही आत्मा के गुण भी हमें नजर आते हैं। लेकिन अगर दैहिक दृष्टि है अभी भी, क्योंकि हम सब नंबरवार हैं, सभी एकदम पूरे आत्माभिमानी तो नहीं बने, तो फिर कभी तो आत्मिक दृष्टि रहती है, कभी कभी दैहिक दृष्टि भी हो जाती है। फिर दैहिक दृष्टि होगी तो देह पर नजर गई, तो फिर देह का प्रभाव, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि देह सांप की तरह है, और जैसे आपने सांप को टच कर दिया तो वो सांप काटेगा जरूर, और अगर सांप काटता है तो उसका विष होता है। ऐसे ही अगर हमने देह को टच भी किया, जो क्रिमिनल आई कहलाती है दूसरे शब्दों में, तो उसका असर हमारे ऊपर ना हो, हमारे मन पर ना हो, नहीं हो सकता, जरूर होगा। तो ये अभ्यास माना अपने आप का रोज चार्ट चेक करके, अपनी दृष्टि वृत्ति का रोज चार्ट कि कहीं मेरी दृष्टि वृत्ति अभी भी क्रिमिनल तो नहीं होती, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं चंचल तो नहीं होती, देह पर दृष्टि तो नहीं जाती, चाहे बाबा कई बार कहते हैं कि हम भाई बहन हैं, लेकिन भाई बहन के नाते में भी, कल की मुरली में भी था, तो बाबा उससे भी ऊपर उठाता है हमें कि हमें भाई भाई की ही दृष्टि रखनी है, बहन है ये देखना ही नहीं है। या तो उसे शिव शक्ति ही समझो, शिव शक्ति है माना शिव के साथ जुड़ी हुई शक्ति है, तो कभी ऐसी दृष्टि होगी नहीं, और नहीं तो फिर आत्मा हम भाई भाई हैं। फिर हम कई बार ऐसी चीजें भी देख लेते हैं, क्योंकि हम कलियुगी दुनिया में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तमो प्रधान वातावरण है, शहर में बाहर गए काम करने, जो भी किसी भी कारण से हम दुनिया में तो आते ही हैं, समाज में तो आते ही हैं, तो कई दृश्य हमें ऐसे देखने में आ जाते हैं जो हम नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर भी दिखाई तो देता है, आंखें थोड़ी बंद करेंगे, आंखें, लेकिन देखते हुए भी जैसे नहीं देखना है। बाबा कहते हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और पड़ गया तो इसका मतलब हम कमजोर हैं। मैंने एक पोस्टर देख लिया, उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया, या कोई वो विज्ञापन देख लिया, एडवर्टाइजमेंट देख लिया, उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया। आजकल टेलीविजन है घरों में, छोड़ो हाथों में ही है ना, तो फिर देख तो लेते ही हैं, घर में बच्चे देख रहे हैं, हमने भी बैठे बैठे देख लिया, खुद नहीं चालू किया हमने, जुकाम हो रहा है थोड़ा, तो हमने तो नहीं चालू किया, लेकिन चालू तो बच्चों ने किया, पर हम बैठे हैं तो बैठे बैठे हमने भी तो देख लेना है, क्या क्या कहेंगे। कई बार कहते नहीं थोड़ा न्यूज देख लेते हैं, भाई लोग कहते हैं थोड़ा न्यूज देख लेते हैं, बहन जी संसार समाचार भी तो होना चाहिए ना, पर क्या होता है फिर वो थोड़ा थोड़ा करते कई बार ज्यादा हो जाता है। हमारा कंट्रोल अगर नहीं रहता अपने ऊपर, और अगर हम थोड़ा भी ज्यादा उसमें चले जाते हैं, तो फिर वो बातों का प्रभाव मन पर ना आए और वो बाबा से हमारा योग न तोड़े, ऐसा हो नहीं सकता। चाहे आप सीरियल बैठ के देख लेंगे, चाहे आप न्यूज बैठ के देख लेंगे, चाहे आप स्पोर्ट्स बैठ करके देख लें, कईयों को क्रिकेट का भी बहुत शौक होता है। तो हमने देखा दादी को, दादी के साथ जो रहने का ड्रामा में पार्ट मिला, दादी न्यूज देखती थी, न्यूज पेपर आता था, टेलीविजन का तो सवाल ही नहीं, न्यूज पेपर दादी देखेगी, सिर्फ मोटी मोटी हेडलाइंस, 10 मिनट में पेपर देख के दादी एक तरफ रख देगी, कभी भी उसको बहुत विस्तार से न्यूज पेपर पढ़ना, इस न्यूज का विस्तार क्या है उसमें नहीं, और मोटी मोटी हेडलाइंस में ही खास खबरें होती जिससे समझ में आ जाता है कि हाँ दुनिया में क्या चल रहा है। तो इससे ज्यादा हमें न्यूज में इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम इस समय बहुत वैल्यूबल है। चलो हो सकता है कई बार हम पर प्रभाव नहीं भी पड़ता, हम इतने मैच्योर हैं कि कोई असर नहीं होता हमारे ऊपर इन चीजों का, लेकिन फिर भी टाइम तो वेस्ट कर रहे हैं हम। संगम युग में हमारा एक एक मिनट कितने वर्ष के बराबर है, बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि एक एक मिनट हमारा कई वर्षों के बराबर है, तो हमें अपने समय को भी इन चीजों में बर्बाद नहीं करना है। इससे तो हम याद करें बाबा को, इससे तो हम अपनी स्वउन्नति के लिए कुछ करें, क्लास सुने या जो भी और भी कई चीजें हम, या हम जाकर सेवा करें सेंटर पर, अगर हमारे पास समय है तो कोई ना कोई सेवा में हम अपना समय लगाएं। तो ये व्यर्थ की बातों को देखना, कई बार नेगेटिव भी हो जाती है वो, आज जो विज्ञान ने इतनी उन्नति की, क्योंकि लास्ट में आने वाले बाबा के बच्चों के लिए कि वो लास्ट तो फास्ट जाएं। आज कितना सहज है, टीवी सबको घर में सब मिलता है, क्लासेस मिलती हैं, मुरली मिलती है, आपको सारे प्रोग्राम्स मिलते हैं, आज यूट्यूब पे सब कुछ इतना है कि अगर कोई फास्ट जाना चाहे तो कोई कमी नहीं है, है ना ऐसा, पर माया की दुनिया भी है उसमें। अब अगर हमारा कंट्रोल है तो हम अपनी लास्ट तो फास्ट की गति पकड़ सकते हैं, और अगर हमारा कंट्रोल नहीं है तो फिर माया हमें डुबा भी सकती है, दोनों ही बातें हैं। तो यहाँ भी हम क्या देखते हैं, हमें क्या देखना चाहिए, वो पूरा कंट्रोल मेरा अपनी आंखों पर हो तो हम कहेंगे कि आंखों पर मेरा अधिकार है। और जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो सदा ही एक दो के प्रति शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि हो, सदा ही एक दो के प्रति स्नेह सम्मान की दृष्टि हो, वो कब रहेगी? जब हम उनके गुण देखेंगे। अगर हमने उनकी कमियों को देख लिया, उनके अवगुणों को देख लिया, तो फिर हमारे में कभी द्वेष भाव आ सकता है, नफरत का भाव आ सकता है, तो शुभ भावना तो नहीं रही, तो वो दृष्टि बदल गई। तो वो हमारी दृष्टि से ही उनको पता चलता है कि इनके वाइब्रेशन मेरे प्रति अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं इनके वाइब्रेशंस में मेरे प्रति नेगेटिविटी है। तो भाई भाई की दृष्टि का मतलब ही है वो आत्मिक भाव, श्रेष्ठ भाव हमारा सदा एक दो के प्रति रहे। फिर कानों के लिए बाबा हमें कहते हैं, क्या हमें सुनना है? सदा ही ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। अब हमेशा तो ज्ञान की बातें हम सुन और सुना नहीं सकते, चलो जितना भी समय हम सुन सकते हैं, कुछ हमारे काम की भी बातें होती हैं, वो भी हमें सुनना होता है, लेकिन क्या नहीं सुनना है? वो कहते हैं ना, गांधी जी के तीन बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, और फिर बाबा एक और ऐड करते हैं, बुरा मत सोचो। तो बुरा मत सुनो मतलब किसी के भी पर चिंतन पर दर्शन की बातें हमें नहीं सुननी है, जिसको बाबा वाहियात बातें कहते हैं या झरमुई झरमुई की बातें कहते हैं, तेरी मेरी की बातें कहते हैं। लेकिन ये बातें क्या होती हैं? ये बातें कनरस वाली होती हैं। कनरस वाली होती है माना किसी ने किसी की बात मुझे कही तो हमें थोड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि द्वापर युग से बाबा कहते हैं कथाएं सुनने की आदत है। तो जब कथाएं सुनने की आदत है तो ये भी सारी कथाएं होती हैं, अच्छा आपको पता है उसने ऐसा किया, वो स्टोरी होती है ना पूरी, तो फिर हम सुनने लग जाते हैं। और जब हम सुने और उसका प्रभाव ना पड़े ऐसा होता नहीं है। तो या तो हम मना ही कर दें कि हमें नहीं सुनना है ये, और अगर हम नहीं कर पाते हैं, मानो कोई ऐसे हैं हमारे सीनियर होते हैं, कई बार परिवार में भी ऐसे होते हैं, भी हमारे बड़े हैं, कोई बात हमें सुना रहे हैं, तो उनका रेस्पेक्ट हम रखते हुए उनको मना तो नहीं करते कि हमें नहीं सुनना, हमारे काम की बात नहीं है, है वही पर चिंतन की बात, लेकिन मुझे सुनना पड़ रहा है। तो दो कान दिए हैं भगवान ने, एक कान से सुनो, दूसरे कान से बाहर निकाल दो, मतलब हमने सुना ही नहीं, उसका असर नहीं आए हमारे ऊपर। पर कहते हैं कि कान जो है उनका शेप क्वेश्चन मार्क का है, तो क्वेश्चन मार्क का शेप होने के कारण वैसे तो एक कान से सुनकर दूसरे कानों से निकालने के बजाय बीच में दिमाग आ जाता है, तो वो क्वेश्चन मार्क काम करने लगता है, ऐसा क्यों कहा, इसका क्या भाव है, मैंने सोचा नहीं था ये ऐसा भी करेंगे या ऐसे भी होंगे, इस तरह की बातें। क्योंकि परचिंतन की बातें तो किसी दूसरे के बारे में ही होती ना, उनकी कमियों के बारे में ही है, फिर हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं, उसके व्यर्थ संकल्प हमारे मन में चलते हैं, फिर वो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, कई बार बाबा से भी हमारा योग उसके कारण टूटता है। और मानो जिसके बारे में कह रहे हैं उससे हमारा संबंध अच्छा है, होता है ऐसा कई बार कि उस आत्मा का हिसाब किताब उनके साथ है पर हमारे साथ नहीं है, सबके साथ एक जैसा हिसाब किताब तो नहीं होता, मेरा उनके साथ स्नेह का संबंध है, लेकिन अब मैंने ऐसी बातें सुन ली उसके बारे में, अब मेरी और मैंने विश्वास भी कर लिया, कई बार ऐसे होते हैं लोग सुनी सुनी बातों पर विश्वास करते हैं, विश्वास भी कर लिया तो मेरी दृष्टि उसके प्रति बदल गई, अब वो मुझे मिलेंगे जब मैं कैसा व्यवहार करने वाली हूँ, उतने ही स्नेह का करूंगी या अंतर होगा, सामने वाला समझेगा क्या हुआ इनको, पहले तो इतना प्यार से मिलते थे, इतना अच्छी तरह बात करते थे, आज क्या हो गया, क्या हो गया, किसका प्रभाव आ गया। तो ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि जब हम सुनते हैं ऐसी बातें तो फिर समा भी नहीं पाते, समा नहीं पाते तो हम दूसरों को कहते हैं, फिर दूसरे दूसरों को कहते हैं, और इस तरह से वो बातें वातावरण में फैलती हैं। क्योंकि ये सारी बातें जो कनरस वाली, इसको बाबा कहता है, एक होता है सिंपल खाना और एक होता है चटपटा खाना, अच्छा कौन सा लगता है? चटपटा खाना। तो ये जो होता है वो तो इसलिए फटाफट और जब वो फैलते हैं तो वो वातावरण को कमजोर करते हैं। तो बाबा कहता है ये हम सूक्ष्म पाप बनाने के भागी बन जाते हैं, और कई बार इसके कारण अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। क्योंकि जो सुनता है वो अपने भाव मिक्स करता है और वो बात बदलती जाती है और कई बार वो सामने वाले को इतना ज्यादा जिसके प्रति होती है वो इतना दुख देती है ये बात कि क्या मेरे बारे में ऐसा कहा लोगों ने और ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी कहानी आती है उसके बाद हंसी की कहानी है लेकिन काफी उससे ये क्लियर होता है कि कैसे बातें बिगड़ती हैं। सभी सुनी हुई बातें सही नहीं होती, इसीलिए कहा सुनी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो एक पंडित थे और उनको दूसरे गांव जाना था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि हो सकता है कि लौटने में लेट हो जाएगा तो आप मेरे को रास्ते का खाना दे देना। तो उसने टिफिन बना के दे दिया और जब खाना खाने बैठे रास्ते में किसी पेड़ के नीचे खाना लगाया ही था कि ऊपर डाली पे एक पक्षी बैठा था, उसने उसी समय बीट कर दी और उनके खाने में वो बीट पड़ गई। अब ब्राह्मण ने देखा कि खाने में पक्षी की बीट पड़ गई तो उनके लिए तो खाना अशुद्ध हो गया, तो खाना हटा दिया, खाना नहीं खाया और फिर दूसरे गांव जाने का विचार भी छोड़ दिया कि अब नहीं जाना, फिर किसी दिन जाएंगे। लौट आए घर, फिर पत्नी ने पूछा आप क्यों इतना जल्दी आ गए, आप तो दूसरे गांव गए थे। तो उसने सोचा नहीं बताना है क्योंकि अगर इसको बता दिया तो पूरे गांव को पता चल जाएगा। पत्नी का स्वभाव मालूम था तो टालते रहे टालते रहे, लेकिन वो पीछे ही पड़ गई। तो जब ज्यादा ही पीछे पड़ गई तो आखिर हार के उन्होंने उसको बता दिया कि ऐसा हुआ जब मैं खाना खाने बैठा तो पक्षी ने बीट कर दी, तो मेरे को फिर इच्छा नहीं हुई, मैं नहीं गया। तू ये बात किसी को कहना मत, थोड़ा जोर देके कहा उन्होंने, किसी को कहना मत। तो उसने कहा मैं क्यों कहूंगी, सीधी सी बात है मैं क्यों कहूंगी। अब दूसरे दिन वो कुएं पे पानी भरने गई, उसकी जो साथी औरतें थी पानी भरने आती थी वो मिली उसको। अब जिसका संस्कार होता है ना उसको पता ही नहीं चलता, बातों बातों में उसने सब कह दिया, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा पक्षी वो उनके खाने में पक्षी की बीट गिर गई। अब चार औरतों ने जो सुना उसमें सब बराबर नहीं सुनते एक जैसा, लोग कई लोग आधी आधी बात सुनते हैं, पूरा ध्यान नहीं होता सुनने पर। तो एक ने क्या सुना, पंडित जी के खाने में पक्षी गिर गया, पक्षी की बीट के बजाय पक्षी गिर गया। अब उसने चार लोगों से बात की, नई बात थी खाने में ही पक्षी गिर गया, तो उसने चार लोगों से बात की गांव में, तो एक ने सुना कि पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया। फिर उसने चार लोगों से बात की तो एक ने सुना कि पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब पक्षी निकलते हैं ये तो चमत्कार वाली बात हो गई, बात पंचायत तक पहुंच गई घूमते घूमते। तो पंचायत ने सोचा अच्छा हमारे पंडित जी ऐसा चमत्कार दिखाते हैं तो हमें पता ही नहीं था, देखना चाहिए कैसे मुंह से पक्षी निकालते हैं, तो बुला लिया उनको। अब उन्होंने सोचा कि क्या हुआ मेरे से, क्या गलती हो गई जो पंचायत में बुलाया है। गए तो पता चला कि चमत्कार दिखाना है, क्या चमत्कार मुंह से उनको लगा कि ये कहां से बात आ गई, किसने कह दिया मुंह से पक्षी निकालते हैं। तो दिमाग चलाया चलाया कि तो समझ में आया कि ये सारी मेरी पत्नी की करामात है। फिर कहा अब आ गई है पंचायत तक बात तो कुछ करते हैं, तो उन्होंने सोचा क्या जवाब देना है। तो जब उनको कहा गया कि पक्षी निकालना है तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पक्षी निकाल के दिखा सकता हूँ, लेकिन जो पक्षी निकलते हुए देखेगा वो भी पक्षी बन जाएगा। सब चले गए। अब समझ लिया ना बात क्या थी और फैलते फैलते क्या हो गई, उसका कोई कोई अर्थ नहीं था, जो मूल बात थी उससे कोई लेना देना नहीं। तो कई बार बातें फैलती हैं तो ऐसा रूप ले लेती हैं, और अगर हम उन बातों पर विश्वास करते हैं तो फिर हम भी पाप के भागी बन जाते हैं उसमें। तो इसीलिए बाबा कहता है हमेशा इस बात के लिए, हालांकि ये होती छोटी छोटी बातें हैं हमारे रोज की दिनचर्या में, हम इसको बहुत साधारण सी बात समझते हैं, तो होता ही रहता है ना, एक दूसरे के बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, आपस में समाचार की तो बातें करेंगे और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, ज्ञान की बातें कितनी करेंगे, और ज्ञान तो याद ही नहीं रहता है, मुरली तो याद ही नहीं रहती है, कितनी याद रहती है मुरली, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, क्या कहेंगे, मुश्किल से दो पॉइंट याद आएंगे। मुरली तो बहुत अच्छी थी लेकिन तो वो इसलिए मुंह से निकलता नहीं, तो फिर क्या निकलता है, जो व्यर्थ भरा हुआ है अंदर। और कई बार कई बातें हम अंदर बहुत सोच लेते हैं, तो जब तक हम उसे बाहर नहीं निकालते, प्रेशर हो जाते हैं ना यहाँ पर, तो जब तक वो बाहर नहीं निकालते तब तक फिर शांति भी नहीं मिलती है। तो फिर हम बोले बिना भी रह नहीं सकते, तो हमारी समाने की शक्ति भी कम हो गई, वो मार्क्स भी हमारे कम हो गए। तो इसीलिए कान पर हमारा अधिकार होना चाहिए। इस ज्ञानी जीवन में उसके भी बहुत मार्क्स हैं। मुख की बात आती है तो बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो। कम बोलो माना अंतर्मुखी सदा सुखी, ये बाबा के कहने का भाव है। क्योंकि जब हम बहुत बोलते हैं तो उसमें हमारी शक्ति व्यर्थ जाती है, और बाबा से जो अतिंद्रिय सुख का हमें अनुभव होना चाहिए, जो मौन में हम बाबा से अपना संबंध कनेक्शन अनुभव करते हैं, वो जब हम वाचा में बहुत आते हैं वो हमारा कनेक्शन टूट जाता है। तो उसके लिए बाबा हमें अंडरलाइन कराते हैं कई बार कि अंतर्मुखता की गुफा में रहना है जितना हो सके। और अगर किसी बात के लिए हमें 10 शब्द कहने हैं तो 10 के बजाय कितने शब्दों में काम चला लो, अगर चलता है तो 2 शब्दों में ही काम चला लो। और इसके लिए ही बीच बीच में मौन का अभ्यास कराया जाता है। जब भी आप भट्टियां करते हैं, चाहे सेंटर पे करते हैं, चाहे मधुबन में आके करते हैं, खास अंडरलाइन कराते हैं। मैंने देखा कई कई जो दूसरे होते हैं, अपने संत वगैरह होते हैं या मठ होते हैं उनके, वो भी अपने लोगों को मौन का अभ्यास कराते हैं तो वो बहुत स्ट्रिक्ट कराते हैं। माना वो मोबाइल भी जमा कर देंगे, उनके मोबाइल हाथ में ही नहीं देते। यहाँ तो फिर भी आपको छुट्टी मिलती है क्योंकि सहज योग है ना, तो मोबाइल भले अपने पास रखो लेकिन मोबाइल ऑफ रखो या साइलेंस में रखो, जो भी कहते हैं, पर वो मोबाइल भी जमा करा देंगे। जो विपस्ना में जाते हैं किसी से बात नहीं कर सकते बिल्कुल 10 दिन तक, तो कई लोग ऐसा अनुभव सुनाते हैं कि ऐसा लगता है 2 दिन तो कि हमको सजा दे दी हो। आदत ही नहीं है मोबाइल के बिना रहने की, आदत ही नहीं है कि किसी से बात किए बिना हम रहें, इतना चुप रहें। और उनका तो योग भी बाबा के साथ नहीं है, यहाँ तो हम फिर भी बाबा के साथ बातें करते हैं, सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं बाबा के साथ, हमारे लिए फिर भी मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी वो 10 दिन कंप्लीट मौन में रहते हैं और फिर कहते हैं कि जो कुछ दिनों के बाद सुख अनुभव होने लगता है, यानी अपने भीतर का जो सुख अनुभव होने लगता है उसके बाद लगता ही नहीं है कि मौन तोड़े। तो शुरू में हर चीज मुश्किल हो गई, लेकिन जब अभ्यास किया, उसका अनुभव हुआ, तो फिर अपने आप मन उस रस को लेने लगता है, फिर हमें सोचना नहीं पड़ता। जिसके लिए बाबा कहता है कोई भी संस्कार हमें डालना है, शुरू में थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, चेकिंग करनी पड़ती है, फिर बाद में वो हमारा स्वभाव हो जाता है। तो मौन भी मतलब सुबह 4 से 8 तो हमारा मौन का समय है ही ब्राह्मणों का, और कोशिश करके हमें रहना ही चाहिए। बहुत जरूरी हो किसी से बात करना वो अलग है, लेकिन उस समय पूरा कोशिश करें कि साइलेंस में रहें, बाह्य मुक्ता में बिल्कुल भी नहीं आए। और सप्ताह में अगर 1 दिन हो सके तो हम सारा दिन मौन रहें। अगर बिजनेस कारोबार वाले हैं तो शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये 4 घंटे तो हमारे हैं ही हैं अपने। फिर धीरे बोलो, कईयों की आदत होती है जोर जोर से ही बोलते हैं, माना उनका नॉर्मल वॉल्यूम ही इतना होता है, फिर ऐसे लगता है वो जब बात भी कर रहे होते हैं तो कहीं लड़ तो नहीं रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम तेज है तो ऐसे लगता है गुस्सा ही कर रहे हैं। सभी नहीं होते ऐसे, लेकिन कोई कोई का आवाज इस तरह का होता है कि जब वो बोलते हैं तो फिर जोर से ही बोलते हैं या चिल्ला के ही बोलते हैं। तो यहाँ भी उसमें भी कंट्रोल, कि अगर हमारा आवाज ऐसा है तो मुझे अपने आवाज को धीमा करना है। कई बार बाबा कहते हैं इतना आवाज हो कि अगर 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में तो सिर्फ 2 ही सुने, तीसरे को भी सुनाई ना दे। यानी जितनी मेरी आवाज का वॉल्यूम होना चाहिए मेरे बातचीत के अनुसार उतना ही। अगर मैं भाषण कर रही हूँ और मुझे तेज बोलना है तो बात अलग है, तब वॉल्यूम बढ़ाना है तो बढ़ाओ। लेकिन जब हम कहीं आपस में 1-2 ही बात कर रहे हैं तब उतना ही हमारा आवाज हो। तो धीरे बोलना और फिर मीठा बोलना। तो वैसे तो हम मीठा ही बोलते हैं, ज्ञान में आने के बाद बहुत परिवर्तन आ जाता है, हमारी वाणी मीठी हो जाती है, सुख देने वाली हो जाती है, लोगों को खुशी देने वाली। सेवा भाव आता है ना, मन में सेवा भाव आता है, नम्रता आती है, व्यवहार में मधुरता आती है, तो वाणी मीठी हो जाती है। लेकिन थोड़ी थोड़ी कड़वी भी होती है कभी 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 होती है। और कब हो जाती है वो, कब हो जाती है हा? जोर से बोलेंगे तो सुनाई देगा। जब मन चाहा नहीं होता है, माना गुस्सा आने के कारण ही हमारी वाणी कड़वी होती है। और गुस्सा कब आता है, जब किसी ने मेरी बात नहीं मानी, या हम जैसा कह रहे हैं वैसा वो नहीं कर रहे, या हमसे वैसा व्यवहार नहीं कर रहे जैसा हम चाहते हैं, या कोई हमसे झूठ बोलता है, या कोई हमका हमारा अपमान कर देता है मानो, या कोई हमारी ग्लानी कर देता है। तो हम ब्राह्मण होने के बावजूद भी अभी भी कहीं कहीं इन बातों में फेल हो जाते हैं। हालांकि हमारी सहन शक्ति, बाबा कहता है सहन करने की शक्ति और सामना करने की शक्ति, अगर हम यूज करेंगे तो इन परिस्थितियों में भी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी, जरूर आएंगी। रोज कोई ना कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी ही होगी जो आपको गुस्सा दिला सकती है, लेकिन फिर भी हम शांत रहें, फिर भी हम धैर्य से जवाब दें अगर हमें जवाब देना है, फिर भी हम प्यार से बोलें, फिर भी हम शुभ भावना से रहें, देना चाहिए, यही बाबा सिखाता है। तो फिर अगर हो जाती है तो इसका मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है। तो अभी हमें अपना अपने पर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो संस्कार है ये तब तक नहीं जाएगा जब तक हम हर रोज इस संस्कार पर काम नहीं करेंगे। गुस्से का संस्कार सबसे कॉमन संस्कार है। पवित्रता पर जल्दी ब्राह्मण विजय पा लेते हैं, जो कठिन सब्जेक्ट होता है ना उस पर ज्यादा अटेंशन देते हैं। दुनिया में भी ऐसे होता है, जिन जो लोग समझते हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत कठिन है उस पर ज्यादा टाइम देते हैं तो उसमें तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। जो सब्जेक्ट को सरल समझते हैं वो सब्जेक्ट में ही फेल तो नहीं होते, लेकिन उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे या पास मार्क्स ही आएंगे, समझो। तो हमारा भी ऐसे ही, गुस्से के सब्जेक्ट को हम बहुत सीरियसली नहीं लेते ब्राह्मण कई बार, तो फिर ये गुस्सा हमारा पीछा भी नहीं छोड़ता है और कहीं ना कहीं मुख से हमारे ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए। फिर हम सोचते हैं बाद में, अरे ये मैंने क्या कह दिया, मेरा चार्ट खराब हो गया, मेरे मुंह से ऐसा शब्द निकल गया। हमारे बोल सदा ही, बाबा कहता है, सुख देने वाले, हिम्मत देने वाले, उमंग देने वाले, किसी का उत्साह बढ़ाने वाले, किसी को आगे बढ़ाने वाले ऐसे ही होने चाहिए। किसी का अपमान करने वाले, किसी को दुख देने वाले शब्द मुंह से, ब्राह्मणों के मुंह से तो कभी भी नहीं निकलने चाहिए। तो ऐसे शब्द होंगे तो लोग कहेंगे सत्वचन महाराज, जो गायन है बाबा कहता है तो बाबा के बच्चों का ही गायन है। लेकिन कब होगा, जब वाणी पर हमारा इतना कंट्रोल होगा। वाणी से मनुष्य की पहचान होती है, क्योंकि सबसे पहले जब हम संपर्क व्यवहार में आते हैं तो वाणी ही होती है। तो एक पर भी एक छोटी कहानी आती है कि एक बार राजा, मंत्री और सिपाही वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, तो अलग अलग हो गए। अब तीनों एक दूसरे को ढूंढने लगे, तो ढूंढते ढूंढते एक वहां जंगल में एक कुटिया थी जहां एक अंधा बाबा रहता था। वहां पर प्यास भी लग रही थी, तो सबसे पहले सिपाही पहुंचा, तो उसने उसको देखा तो सोचा इनसे पूछता हूं शायद। तो उसको समझ में आया कि ये अंधा है, उसकी एक्टिविटी से। तो उसने कहा, ये अंधे, तूने यहां से किसी को जाते हुए देखा, कोई आया इस तरफ? तो उसने कहा, नहीं कोई नहीं आया। फिर वो चला गया। फिर थोड़े समय के बाद मंत्री ढूंढता हुआ पहुंचा वहां, तो उसने पूछा उसको, वो भी समझा कि अंधा है, तो उसने थोड़ा रिस्पेक्ट से बोला, अंधे बाबा आपने यहाँ यहाँ कोई आया? तो उसने कहा, हाँ एक आया था। फिर वो कहा, उसने पूछा किस दिशा में गया, तो उसने इशारा भी कर दिया कि इस दिशा में गया। फिर वो वहां से गुजरा, तो राजा ढूंढता ढूंढता पहुंचा वहां कुटिया में, तो उसने भी देखा और वो समझा कि अंधा है। पर उसने क्या संबोधित किया उसको, महाराज आपने देखा यहाँ मेरे सिपाही और मंत्री, उसने ये नहीं बोला सिपाही और मंत्री, यहाँ से कोई गुजरा ऐसे ही पूछा उसने, तो उसकी भाषा से ही वो समझ गया कि वो राजा है। तो उसने कहा, उसने भी उसको कहा, हाँ महाराज आपका सिपाही और आपका मंत्री अभी अभी यहाँ से गए हैं इस दिशा में। तो उसको आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि तुमने कैसे जाना कि मैं राजा हूं? तो उसने कहा कि आपकी भाषा से। फिर उसने बताया कि आपके सिपाही ने कैसे बोला, आपके मंत्री ने कैसे बोला और आप किस तरह से बात कर रहे हैं। तो उसकी व्यवहार और उसकी भाषा ने ही उनका परिचय दे दिया कि ये कौन से कुल से आ रहे हैं या कौन से लेवल से आ रहे हैं। तो वही हमारी पहचान होती है। और हम तो सर्वश्रेष्ठ रॉयल कुल की आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, ऊंच आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो फिर हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, फिर हमारे मुख से हम खाते भी हैं, स्वाद की कर्मेंद्रिय भी है ये। तो वैसे तो हम बाबा के बच्चे हैं, बाहर नहीं खाते हम, बहुत सारे भोजन की चीजों पर हमारा कंट्रोल है और नहीं भी है, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि फिर जब हम बाहर नहीं खाते तो फिर हमारे सेंटर पर या हमारे घर में जब भी हम कोई ऐसे व्यंजन बनाते हैं जो खाने जैसे हैं, तो हम सोचते हैं बाहर तो खाते नहीं है, चलो आज ही खा लो अच्छी तरह से, बड़ी मुश्किल से ये बना है, मिला है, चाहे वो भोग में ही मिला हो। तो वैसे तो ठीक है, पर मानो किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई को हार्ट की बीमारी है, क्योंकि आज के जमाने में कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है, और मुझे मीठा नहीं खाना है और भोग में तो मीठा ही मिलता है, तो फिर नहीं खाना है माना सिर्फ भोग ही खाना है। माना कंट्रोल का मतलब क्या, कि मुझे मालूम है कि मुझे मीठा कितना खाना है, उतना ही हम खाएं। ये नहीं कि भोग था ना बाबा का इसलिए पूरी प्लेट खा लिया या पूरा गुलाब जामुन खा लिया या पूरा रसगुल्ला खा लिया। आपके वहां तो संदेश वगैरह वैरायटी मिठाइयां होती है ना बंगाल में, तो खाने पीने पर इतना कंट्रोल हमारा चाहिए, और वो हमारी तबीयत के लिए तो जरूरी है ही है। कई बार ऐसे होता है, मानो आप गए वहां अपने परिवार में, कोई उत्सव है, होता ही रहता है, किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी है, या कोई पार्टी है, किसी का कोई समारोह है। अब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें निभाना भी है उनके साथ। तो यदि हम पक्के हैं अपनी धारणा में, तो फिर कितना भी कैसा भी भोजन वहां परोसा गया हमारी दृष्टि नहीं जाएगी। हम जाते हैं बाजार में, कितनी चीजें देखते होंगे जो पहले हम खाते थे अब नहीं खाते, तब हमारी नजर भी उसकी तरफ नहीं जाती। नहीं खाना है माना वो संकल्प है हमारा तो। लेकिन अगर हम अपने रिश्तेदारों का लिहाज करने लगते हैं, कहीं ये बुरा तो नहीं मान जाएंगे, हाँ, या आज हम शादी पर आए हैं चलो आज खा लेते हैं, हम बाहर आए हैं हॉलीडे पर आए हैं अपनी फैमिली के साथ, अब कहाँ खाएंगे, क्या सेंटर ढूंढेंगे, कितनी मेहनत करेंगे, चलो थोड़ा बहुत आज खा लेते हैं, बाबा की याद में खा लेते हैं, फिर आगे से नहीं खाएंगे। कुछ कुछ ब्राह्मण थोड़े कच्चे भी होते हैं, उनकी बात है, जो पक्के हैं वो तो कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिन स्थिति पैदा हो जाए, वो तो अपना खाना अपने साथ रखेंगे और जो अपना है वही खाएंगे, उसके अलावा नहीं खाएंगे, या खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्या कहेंगे। तो अगर ये भी हमारा व्रत टूटता है जो भोजन का नियम बाबा ने हमें दिया है, क्योंकि उसका सीधा संबंध हमारी धारणाओं के साथ होता है, बाबा ने हमें सिखाया ना जैसा अन्न वैसा मन, तो यदि कहीं वो है हमारे अंदर कमजोरी, तो वो भी ना रहे, वो भी नहीं रहनी चाहिए भोजन की। फिर हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं मन बुद्धि संस्कार, स्थूल कर्मेंद्रियों पर तो अधिकार चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे अधिक सूक्ष्म पर चाहिए, क्योंकि हर चीज मन से शुरू होती है। अगर मन अधिकार में है तो कर्मेंद्रियां भी अपने आप अधिकार में आने लग जाएंगी। मन को हम जहां लगाना चाहें, जिस समय जैसे लगाना चाहें, क्या हमारा मन लगता है, जब हम नया नया योग सीखते हैं तो हमारी शिकायत क्या होती है, मन नहीं लगता है, यही शिकायत होती है ना। और इतने साल हो गए अभी हमें ज्ञान में चलते हुए और अभी भी हमारी यही शिकायत हो, तो हम सोचते हैं बिंदु रूप स्थिति का अनुभव करें, अभी तो आप योग कर रहे हैं, भट्टी कर रहे हैं 3 दिन से, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। हाँ, सुना ना, फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त स्थिति, बीज रूप स्थिति, अशरीरी स्थिति, तो वो पावरफुल स्थितियां हैं योग की। और पावरफुल स्थिति में योग करने का मतलब, अगर हम उस स्थिति में आधा घंटा या लगातार उस स्थिति में रहते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, संस्कार परिवर्तन होते हैं, आत्मा पावन होती है, तब हमारा स्वरूप परिवर्तन होता है, तभी हमें वो परिणाम मिलते। साधारण योग से नहीं मिलते, अग्नि चाहिए। जिसे कहा अग्नि में आप कोई चीज डालोगे तभी उसका रूप परिवर्तन होगा। जो हम मिसाल देते हैं कि भाई लेंस रखोगे तभी कागज जलेगा, वैसे कागज नहीं जलने वाला है। लेकिन यो मन पावरफुल स्टेज में टिके नहीं पाता। 1 मिनट गए परम धाम में, बाबा को देखा और फिर नीचे आ गए, फिर कोई बात याद आ गई, फिर उसमें मन चला गया, फिर याद आया अरे मुझे तो, मैं बिंदु रूप स्थिति में बाबा के साथ मुझे योग करना है। फिर गए परम धाम में, बाबा के साथ बैठे, लगन में मगन होने की कोशिश की, बाबा के लव में लीन होने की कोशिश की, फिर कोई बात नीचे खींच लाई। तो इसको एकाग्रता नहीं कहेंगे, यानी मन पर कंट्रोल हमारा पूरा है ये नहीं कहेंगे। कंट्रोलिंग पावर माना, जिस संकल्प में मन को मैं स्थित करना चाहती हूँ उसमें मेरा मन टिक जाए। अगर मैं इस विचार में अपने मन को टिकाना चाहती हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और उस स्थिति का अनुभव लंबे समय तक सिर्फ उस विचार में रह करके ही मुझे करना है, तो मेरा मन हिले नहीं। टिक जाना माना उस सीट पर मैं टिक जाऊं। ये हमारी सीट है ना, स्वमान की बाबा कहता है, हमारी पोजीशन है। तो इतने जो भी स्वमान है, जो स्वमान की सीट पर हम सेट होना चाहें, वो सीट पर हम जितना समय चाहते हैं उतना समय सेट हो जाए तब। पर अगर छोटी छोटी बातें मेरे मन को प्रभावित करती हैं, होता है दिन भर में कितनी बातें होती हैं, कितनी परिस्थितियां होती हैं, तो मन उलझ जाता है उसमें। कोई भी समस्या आई उसके क्यों क्या में हम चले गए। मानो हमें ज्ञान के पॉइंट्स यूज करके बिंदु लगाना नहीं आता। बाबा कहता है फुल स्टॉप लगा दो, मन को हलचल में मत आने दो। मन अचल, अटल, अडोल, यानी एक रस स्थिति में रहे, जैसे आज का वरदान था ना। तो एक रस स्थिति में मेरा मन कब रहेगा? समस्याएं नहीं आएंगी, ये तो कभी नहीं होने वाला। होने वाला है और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बिगड़ता जाएगा परिस्थितियां और भी बिगड़नी है। पर मेरी स्थिति, मेरी स्वस्थिति, परिस्थिति पर विजय बने, वो कब बनेगी? कब बनेगी? जब हमें ज्ञान की पॉइंट्स समय पर यूज करना आएगा, ज्ञान के तीर हम चला सके समय पर। अब बाबा कहता है हर बात में कल्याण है, संगम युग कल्याणकारी, आपका किसी बात में अकल्याण हो ही नहीं सकता। ये पॉइंट अगर मैं अनुभवी हूं इसकी, अब सुन लेते हैं हम, खुश होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर मैंने इसका चिंतन किया, मनन किया, इसकी गहराई में मैं गई, इसका एक्सपेरिमेंट भी किया, अपने जीवन में इसे यूज करके भी देखा कि सचमुच कल्याण है या नहीं है, फिर समझ में आया कि नहीं, सचमुच बाबा ने जो कहा उसमें कल्याण है। दिखाई नहीं देता है सामने सामने, लेकिन थोड़ा ही समय पार होते, भविष्य में आते ही वो दिखाई देने लगता है ना। अनुभवी कि नहीं अनुभवी, कौन अनुभवी है कि बाबा ने ये जो बात कही उसमें हमारा कल्याण है? हाथ उठ, उठाओ उठाओ, देखें, देखो सभी, कोई भी ऐसा नहीं जो नहीं उठा रहा। मतलब अब ऐसी कोई बात आई तुरंत मुझे ये पॉइंट याद आनी चाहिए कि मेरा कल्याण है, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, और बाबा साथ है तो बुरा हो ही नहीं सकता है। बस वहीं फुल स्टॉप लग गया, मन व्यस्त संकल्पों में जाएगा ही नहीं। फिर हम जो कर सकते हैं उसके लिए वो अवश्य हम करेंगे, जो हमारा फर्ज है उस कार्य में, या जो हमें देना है वो हम दें, चाहे सकाश देना है, मनसा से हमें सहयोग देना है, जो भी। फिर ऐसे ही मानो कोई बात में मन उलझा हुआ है और बाबा कहता है कि जैसे ब्रेक हमारा पावरफुल होना चाहिए, कोई पहाड़ी पर हम चढ़ते हैं तो चेक करते हैं सबकी ब्रेक ठीक है, तो ऐसे ही कोई बात में आपका मन जा रहा है, आपका टेंशन नहीं है, फिर एकदम आपका ध्यान आ रहा है, अरे मैं व्यर्थ व्यर्थ सोच रहा हूँ, इतना बिना मतलब ही इतनी बातें चल रही है मेरे मन में, और मुझे ब्रेक देना है, स्टॉप कहो और मन स्टॉप हो जाए, तो देखो होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता तो मेरा ब्रेक कमजोर। ज्यादातर कब ब्रेक नहीं लगता, जब हम फीलिंग में होते हैं, किसी ने मुझे हर्ट कर दिया, दुख पहुंचाया, उसकी मुझे इतनी फीलिंग आ गई। कईयों की सेंसिटिव नेचर होती है, सेंसिटिव नेचर माना एक बात किसी ने कह दी, बस वो उसका ट्रिगर पॉइंट है, बस वो बटन दबाया और चालू फिर वो रुकता नहीं, मन जो है वो नॉन स्टॉप चलता रहेगा, एक दिन दो दिन चार दिन, कई बार कितने दिन हो गए पता नहीं चलता। तो फिर ऐसा मन होगा तो मन कमजोर होगा या नहीं होगा? ऐसा मन बाबा में लगेगा, योगी नहीं लगेगा, योग की शक्ति भी जमा नहीं होगी, वो शक्ति नहीं मिलेगी, बाबा से अनुभव नहीं होंगे, तो फिर हमारा अटेंशन पूरा चाहिए। इसीलिए बाबा रोज अपनी दरबार लगाते थे, दिखाते ना ब्रह्मा बाबा की जो जीवन कहानी है उसमें दिखाते हैं कि बाबा रोज अपना दरबार लगाते थे और मन मंत्री, मन को मंत्री कहते थे, आत्मा राजा है, मन उसका मंत्री है और मुख्यमंत्री है, सबसे मुख्यमंत्री कर्मेंद्रियों में मन है। तो आज वो मेरा मन ऑर्डर में रहा कि नहीं रहा, कैसे रहता है ऑर्डर में, फिर कहानी सुनाते हैं आपको कि एक राजा को अपना वारिस चाहिए था। तो उसने एक युक्ति सोची, उसके पास एक बकरी थी और उसने घोषणा की कि जो बकरी को घास खिला के लाएगा सारा दिन, इतना पेट भर जाएगा इसका कि फिर दरबार में जब इसको घास दी जाएगी तो उसमें मुंह नहीं डाले, उसको ही मेरा वारिस बनाया जाए। ऐसे कोई मुश्किल शर्त तो नहीं है, तो कुछ लोगों ने कोशिश की तो बारी बारी से उनका नंबर लगाया कौन किस दिन ले जाएगा, तो एक लेकर के गया बकरी को, सारा दिन उसने घास चराया उसको, फुल मतलब उसको लगा कि बकरी ने कोई टाइम ऐसा नहीं था जब घास नहीं खाई हो, सारा दिन से ही घास खा रही है, तो इतना पेट इसका भरा होगा कि दरबार में तो ये खाएगी नहीं। वो लेके गया दरबार में, कहा महाराज मैंने इसको भर पेट घास खिलाई है पूरा दिन। तो राजा ने बकरी के सामने वो घास रखवाई, बहुत हरी भरी घास, एकदम मुलायम मुलायम घास, और जैसे ही बकरी ने वो घास देखी तुरंत इतनी उसके ऊपर झपट पड़ी कि जैसे सारा दिन उसने कुछ खाया ही नहीं। तो राजा ने कहा ये तो ऐसे खा रही है जैसे तुमने इसको कुछ खिलाया ही नहीं। तो कहा महाराज मैंने तो बहुत खिलाया है, पता नहीं क्यों खा रही है। फेल हो गया वो अपनी परीक्षा में, फिर दूसरे व्यक्ति को दिया गया। हाँ उसने भी खिलाया तो सही, उसने अपनी रीति से, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज तो था लेकिन फिर भी उसने कहा यही तरीका हो सकता है कि घास खिलाऊं, इसको भरपेट खिलाऊं। वो भी फेल हो गया क्योंकि बकरी ने फिर घास में जाके मुंह मार दिया। जब तीसरे का नंबर आया तो उसने एक युक्ति सोची, उसने क्या किया, एक डंडा लिया अपने हाथ में और जब भी बकरी घास में मुंह डालती थी उसको लगाता था जोर से मुंह पे। अब वो बकरी घास खाने जाए और उसको डंडा पड़े, या घास खाने जाए और उसको डंडा पड़े, बिचारी बकरी समझ गई कि घास खाना माना डंडा खाना। तो अब उसने जब देखा कि घास रखने के बाद भी बकरी घास में मुंह नहीं डाल रही, क्यों नहीं डाल रही, क्योंकि उसको डंडे का डर है, वो पूरा आश्वस्त हो गया कि अब इसको डंडे का डर आ गया है। वो उसको लेके गया दरबार में, महाराज ये बकरी घास नहीं खाएगी, मैंने इसको भरपेट खिलाया। राजा ने कहा देख लिया ना पहले दो को? कहा महाराज आप रखिए तो सही। तो घास रखी तो वो डंडा लेके बिल्कुल सामने ही खड़ा था, तो जैसे ही बकरी ने डंडा देखा, घास देखी, बिल्कुल दूर खड़ी रही, नहीं आई घास के पास। उसको पता था अगर घास में मुंह डाला तो डंडा पड़ेगा, डर किसका था, डंडे का। हमारे मन का स्वभाव भी ऐसा है ना, ऐसा जितनी उसकी इच्छा पूरी करते जाओगे उतना इच्छाओं में लगा रहेगा। तो कौन सा डंडा देना पड़ेगा मन को? श्रीमत का डंडा रोज लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, तब वो कंट्रोल में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। तो लास्ट तक, कई बार लोग कहते हैं नहीं हम लास्ट में तो एक रस हो जाएंगे, अचल हो जाएंगे, लास्ट में एक बाबा के सिवाय हमें कोई याद नहीं आएगा, हम इतना पुरुषार्थ कर लेंगे लास्ट में। बहुत काल का पुरुषार्थ, बाबा कहता है बहुत काल का ये अभ्यास होगा मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर का, तब अंत में भी। और अंत की परिस्थितियां तो ज्यादा खींचने वाली होंगी, क्योंकि विनाश की परिस्थितियां होंगी तो कैसी होंगी, अपने ही संस्कार हो सकता है हमारे लिए विघन बन जाएं, जो रहे हुए संस्कार हैं, दूसरी आत्माओं के संस्कार, उनके कारण हम परेशान हो सकते हैं, या जो तमोगुणी वाइब्रेशंस हैं, जो उसको बाबा कहता है भटकती हुई आत्माएं, इविल सोल्स, उनका भी असर, क्योंकि अकाले मृत्यु बहुत ज्यादा होगी तो इविल सोल्स का प्रभाव भी उस समय बढ़ जाएगा। प्रकृति की हलचल, कितनी प्रकृति की हलचल, कब क्या हो जाएगा मालूम नहीं, कोई भी ऐसी खिंचातान होनी ही है अंत में। और वो सब हलचल होते हुए भी मन अचल रहे, कितना मन मजबूत चाहिए, कितना अभ्यास चाहिए पहले से, तो वो अभी से हमारा होगा तब हम अंत में भी उसमें विजयी बनेंगे। तो मन की कंट्रोलिंग पावर पर अभी से हम अपनी चेकिंग रखें कि जब मेरा मन बहुत व्यस्त संकल्पों में है तब क्या हम फुल स्टॉप लगा पाते हैं, तब क्या हम मन को बाबा में लगा पाते हैं, और जैसा हम मन को आज्ञा देते हैं वैसा मन मानता है, मानता है मन अगर कंट्रोल करने वाला इतना पावरफुल हो तो। ऐसा नहीं कि नहीं मानता है, मेरा मन मेरी बात नहीं माने, मैं आत्मा राजा हूं नहीं माने, ऐसा हो सकता है, मानता है हा? लेकिन वो आज्ञाकारी सेवक कब बनेगा, जब राजा अपनी सीट पर सेट होगा। ठीक है, फिर बुद्धि, बुद्धि हमारी निर्णय शक्ति है, निर्णय शक्ति पर अधिकार माना, सही समय पर सही निर्णय लें हम, सही समय पर सही निर्णय हम तब ले सकते हैं जब मन शांत है, मन बैलेंस्ड है, मन जो है वो निराकारी स्थिति, आत्मिक स्थिति में है, तब हम स्थितियों को सही तरीके से देख पाते हैं, तब सही निर्णय होता है, नहीं तो उल्टा निर्णय कर लेते हैं हम, जहां सामना करने की शक्ति चाहिए वहां सहन कर लेते हैं, जहां सहन करने की शक्ति चाहिए वहां सामना कर लेते हैं, जहां समाने की शक्ति चाहिए वहां वर्णन कर देते हैं। तो ये क्या किया हमने, गलत निर्णय ले लिया, और फिर निश्चित रूप से हम असफल हो जाएंगे उसमें। तो सही समय पर सही निर्णय हो, उसके लिए अपनी वो स्टेज चाहिए जो बताया, कि जितना निराकारी और शरीरी स्थिति में स्थित होकर हम निर्णय लेंगे, बाबा से हमारा जितना कनेक्शन क्लियर होगा हमारे निर्णय बिल्कुल सही होंगे। ये बुद्धि पर अधिकार और संस्कारों पर अधिकार माना, जो मेरे नेचुरल संस्कार हैं आत्मा के, जो मेरा निजी स्वभाव है वो व्यवहार में आए, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, यही हम कहते हैं, तो मेरे यही संस्कार इमर्ज हो और लोगों को भी मेरे से यही अनुभव हो, यानी जो बाबा के संस्कार हैं वो मेरे संस्कार हैं, बाबा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, बाबा सदा हमें स्नेह तो देता ही है लेकिन साथ साथ दातापन के संस्कार भी हैं बाबा के, रहम दिल के संस्कार भी हैं, क्षमा का सागर भी है, क्षमा के संस्कार भी हैं, तो फिर हमारे भी यही संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहें, ऐसे नहीं कि पुराने संस्कार भी बीच बीच में इमर्ज हो जाएं, कभी ये कभी वो, पुराने माना है तो सही हम, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में ईर्ष्या भी आ जाती है, थोड़ा थोड़ा किसी से नफरत भी हो जाती है, या थोड़ा थोड़ा कभी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नाराजगी, मूड ऑफ, देह अभिमान के जो संस्कार है जिसे हम कहेंगे, थोड़ा थोड़ा बीच में वो भी अपना चांस ले लेते हैं, तो इसका मतलब अभी संस्कारों पर पूरा अधिकार हमारा नहीं है। तो ये तब हो पाएगा जब हर रोज का चार्ट हम रखेंगे, ये बाबा हमें अंडरलाइन कराते हैं, इसीलिए रोज चार्ट रखने की बात बाबा ने कही हमें, सोने से पहले अपनी कर्मेंद्रियों की चेकिंग करो, मेरी हर कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रही नहीं रही तो क्या कमी रही, और क्या कमी रही उसको दूर करने के लिए बाबा की श्रीमत क्या है, या बाबा से मुझे वो शक्ति लेनी है, बाबा को दे देना है मुझे, अपना सच्चा चार्ट देंगे तो बाबा एक तो माफ कर देता है जो हमसे गलती हुई, और दूसरा आगे के लिए भी हमें शक्ति मिल जाती है उसको करने की। फिर ये नॉलेज दर्पण है। कई बार हम बाबा से पूछते हैं कि बाबा हम क्या बनेंगे, हाँ सतयुग में मेरा क्या पद होगा, तो बाबा कहता है जो स्वराज्य अधिकारी स्थिति है उससे आप देख लो आप क्या बनोगे। तो अगर आपका सभी कर्मेंद्रियों पर पूरा अधिकार है, एक भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देती, स्थूल सूक्ष्म सब कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर में है, तो आपको विश्व का तख्त मिलने वाला है, आप विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, आप श्री नारायण बनेंगे, आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन अगर सर्व कर्मेंद्रियां अधिकार में नहीं है, कोई कर्मेंद्रिय कभी धोखा दे जाती है, कभी मतलब सब कर्मेंद्रिय ठीक है, आंख जो है वो थोड़ा कभी धोखा देती है, एक ही कर्मेंद्रिय कमजोर है कभी कभी, तो बाबा कहता है राज्य तख्त के अधिकारी नहीं, रॉयल फैमिली में आने वाले बन जाएंगे। रॉयल फैमिली का स्टेटस भी कम नहीं होता, तो पूर्ण विजयी नहीं है, थोड़ा कमी है, इसीलिए रॉयल फैमिली में आ जाए। पर कभी कोई कर्मेंद्रिय धोखा दे जाती है, माना एक नहीं दो, दो कर्मेंद्रियां कमजोर हैं, तो फिर साहूकार साहूकार प्रजा में आ जाएंगे। फिर उसमें अगर ज्ञान बहुत है, ज्ञान है और ज्ञान हम सुना भी सकते हैं, उससे बाबा का संदेश देते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, लेकिन खुद नहीं यूज कर पाते, खुद के ऊपर जब परिस्थिति आती है तब ज्ञान भूल जाता है। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना कि पंडित होते हैं कई, वो जैसे कहते हैं राम राम कहो नदी पार हो जाएगी, जब खुद का टाइम आया तो कहा मुझे तो नाम चाहिए, मैं राम राम कह के पार नहीं हो सकता। तो कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन ज्ञान का खजाना बहुत है, वर्णन बहुत कर सकते हैं लेकिन खुद यूज नहीं कर सकते, तो भी साहूकार प्रजा में आ जाएंगे, ये बाबा कहता है। और हर कर्मेंद्रिय धोखा देती रहती है, कभी कोई तो प्रजा है। और अगर कर्मेंद्रियों के वश होकर उदास हो जाते हैं, अपने संस्कारों के दास हैं, परवश महसूस करते हैं, मूंछते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझन में आ जाते हैं, दूसरों को भी उलझाते हैं, ऐसे स्वभाव हैं तो कौन से पद में जाने वाले हैं, अपने आप बता देंगे दास दासी पद में जाने वाले हैं। ज्ञान में आए, थोड़ा समय चले और फिर आश्चर्यवश सुनंती कथंती भागंती अगर हो गए तो मालूम ही है, तो पता चल जाएगा मेरा स्टेटस कहाँ है, अपनी कर्मेंद्रियों को चेक कर लो, पता चल जाएगा मेरा स्टेटस क्या है। तो बाबा ने कहा यह आपके लिए दर्पण है, पर हम चेंज भी कर सकते हैं, अभी भी समय है और हम चाहें तो अपने स्टेटस को ऊंचा कर सकते हैं, अपने पद को ऊंचा कर सकते हैं, तो वो पुरुषार्थ हम करें। बहुत काल का पुरुषार्थ होगा तो वो प्राप्ति होनी ही होनी है। तो ये था हम कर्मेंद्रियों के ऊपर स्वराज्य अधिकारी, स्वयं के ऊपर राज्य अधिकारी बने। संगम युग में बाबा कहता है दूसरों के ऊपर राज्य अधिकारी नहीं बनना है, हमारा अधिकारी बनने का मतलब हम दूसरों के ऊपर ऑर्डर चलाना शुरू कर दें या अपने साथियों के ऊपर ऑर्डर चलाना शुरू कर दें, वो नहीं, वो हमारे सहयोगी साथी हैं। ऑर्डर किस पर चलाना है, स्वयं पर, अपने आप पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर। ठीक है, ओम शांति। एक हाथ की ताली बजाना सिखाया हुआ है ना आपको, ओम शांति। गीत बजेगा या लाइट नहीं है तो बजेगा।